أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أما بعد، السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے پروگرام کو لے کر۔ پروگرام میں آپ کا سواگت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے وصیت کے بارے میں گفتگو کی تھی، وصیت کے احکام اور وصی کے شرائط آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج ہم آپ کے سامنے موت اور میت کی گفتگو کو شروع کریں گے، لیکن سب سے پہلے محتضر یعنی اس شخص کے احکام کے جس پر موت کے آثار طاری ہو گئے ہیں، جس کی موت نزدیک ہے، اس کے احکام آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ محتضر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس پر موت کے آثار طاری ہو گئے، یعنی اب معلوم ہے کہ مرنے والا ہے، انتقال ہونے والا ہے، یعنی ایسے حالات اس کی ایسی کیفیت ہو گئی ہے، یعنی جو جانکنی کے عالم میں ہے۔ جو انسان مرنے والا ہے، موت کے آثار اس پر طاری ہو گئے ہیں، اس کی بنسبت جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر ایک ذمہ داری واجب ہوتی ہے، ایک فریضہ عائد ہوتا ہے، اور وہ فریضہ یہ ہے کہ جو بھی دیکھے کہ کوئی انسان مرنے کے نزدیک ہے، موت کے آثار اس پر نمودار ہو گئے ہیں، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ محتضر کو، اب یہاں پر جو ہے ہم لفظ محتضر استعمال کریں گے، پہلے ہی دوستوں کو ہم نے بتا دیا ہے، ایک بار پھر بتا دیں کہ محتضر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس پر موت کے آثار طاری ہو گئے ہیں اور اس کی موت نزدیک ہے، یعنی مرنے والا ہے۔ تو اس انسان کی بنسبت فریضہ یہ ہے کہ جو بھی دیکھے محتضر کو، وہ جو ہے اس کو قبلے کی طرف لٹا دے، یعنی قبلہ رخ لٹا دے، یعنی اس طریقے سے لٹائے کہ اس کے پیروں کے تلوے جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے، اور ایک چیز اور یہ کہ سیدھا لٹائے، یعنی اس کی کمر جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو، الٹا نہ لٹائے، یہ جو ہے واجب ہے۔ اس میں جو ہے وہ جو اس کے ولی اور مالک ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کا بیٹا جو ہے اس کا ولی ہے، یا بیوی کا انتقال ہو رہا ہے تو شوہر اس کا ولی ہے، یہاں پر ولی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ولی کی اجازت مثال کے طور پر جو ہے وہ نماز کے لیے ولی کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی دیکھے اس پر واجب ہے کہ وہ بغیر کسی کی اجازت کے اس کو قبلہ رخ لٹا دے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کچھ مستحبات ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مستحب یہ ہے کہ جو انسان مرنے کے عالم میں ہے، یعنی جس کی موت نزدیک ہو گئی ہے، اس کو جو ہے کلمہ پڑھایا جائے، 12 اماموں کا اقرار اس سے لیا جائے، یعنی اس کو کلمہ دہرائیں اور اس کے سامنے جو ہے اس سے 12 اماموں کے بارے میں پوچھا جائے، اس کے سامنے یہ نام بیان کیے جائیں، اور جتنے بھی عقائد ہیں ہمارے دین اسلام اور مذہب تشیع کے، وہ سب جو ہے اس کو اس طریقے سے اس کے سامنے بیان کیے جائیں، اس کو پڑھائے جائیں کہ وہ سمجھتا رہے، جس میں جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے، رسول کی رسالت، ائمہ کی امامت، اور جنت دوزخ ان اور قیامت وغیرہ کا عقیدہ جو ہے وہ، منکر و نکیر کے سوال اور قبر، ان تمام چیزوں کا عقیدہ جو ہے اس کو بیان کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے تاکہ وہ سمجھے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری جو چیز مستحب ہے وہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں بھی ہم نے بیان کی ہیں ان سب کی تکرار کرتے رہیں جب تک کہ اس کو موت آئے، یعنی جب تک موت آئے تب تک اس کی تکرار کرتے رہیں۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی کی جان نکلنے میں مشکل ہو رہی ہے، یعنی موت کے آثار طاری ہو گئے ہیں لیکن بڑی سختی میں ہے اور پریشانی میں ہے، آسانی سے جان نہیں نکل رہی ہے، تو اگر اس کو برا نہ لگے، اگر وہ جو ہے وہ ناراض نہ ہو، تو اس کو جو ہے اس جگہ پر لے جایا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی گھر میں وہ جگہ جہاں وہ گھر میں نماز پڑھتا تھا، اس جگہ پر جو ہے اس کو لے جایا جائے، وہ جس چیز پر بھی لیٹا ہے، چاہے وہاں فرش بٹھا کر لیٹا دیا جائے، یا اس کے چار پائی یا تخت وغیرہ کو وہیں پر منتقل کر دیا جائے۔ اب آپ کہیں گے جناب نماز تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، کیا اس کو مسجد میں لے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسجد میں جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ مسجد میں واجب نمازیں ہوتی ہیں، مستحب نمازوں کے لیے جو ہے وہ گھر کے لیے کہا گیا ہے کہ مستحب نمازیں انسان کو گھر میں پڑھنی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے इंसान जो है उसके घर में नूर आता है, घर में बरकतें आती हैं, बरकतों के फरिश्ते आते हैं, नेकियों के फरिश्ते आते हैं, और खुसूसन जब उसकी जान निकलने का वक्त आता है, अगर जान निकलने में सख्ती हो और उस जगह पर उसको मुंतकिल कर दिया जाए जहाँ वो नमाज़ पढ़ता था, तो उसकी रूह आसानी से निकल जाती है। उसके बाद जो चीज़ मुस्तहब है वो ये है कि जिसकी रूह निकल रही है उसकी आसानी के लिए, ताकि उस पर जो है वो ज़्यादा सख्ती ना हो, सख्ती दूर करने के लिए उसके सरहाने जो है सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए, सूरह साफ़ात, सूरह अहज़ाब, आयतुल कुर्सी, और इसी तरीके से जो है वो सूरह आराफ़ की आयत नंबर 54 और सूरह बकरा की 3 आयतों की तिलावत करनी चाहिए, और इसके अलावा भी जितना कुरान पढ़ सकें बेहतर है। और पांचवी चीज़ जो मुस्तहब है वो ये है कि जो चीज़ें मासूमीन अलैहिस्सलाम से वारिद हुई हैं उस इंसान के पास पढ़ने के लिए जो जान देने के आलम में है, वो दुआएं भी पढ़नी चाहिए। ये मुस्तहब बातें जो हमने आपके सामने बयान किए। अब नौबत है मकरूहात की। मकरूहात में भी चंद चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसको तनहा छोड़ना, जिस कमरे में है, जिस घर में, उसको अकेला छोड़ दिया, वहाँ कोई है ही नहीं, ये मकरूह है, यानी अच्छा काम नहीं है, ये काम नहीं करना चाहिए, उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसके पेट पर जो है किसी भारी चीज़ को रखना, पेट पर उसके भारी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जो है वो कोई इंसान जान कुनी के आलम में है, मरने वाला है, और उसको बहुत अजियत हो रही है, बहुत परेशान हो रहा है, तो बेचैनी के आलम में जो है वो इज़्तराब में जो है वो मिसाल के तौर पर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, और कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, गिर रहा है, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए उसके ऊपर कोई संगीन और भारी चीज़ रख दी जाए, ये भी सही नहीं है, यानी मकरूह है। उसके बाद जो है वो जहाँ कोई जान देने वाला है, यानी किसी पर मौत के आसार तारी हो गए हैं, गोया मुहतज़ल जहाँ पर है, वहाँ किसी मुजनिब इंसान का बग़ैर गुस्ल किए, और इसी तरीके से किसी हाइज औरत का जिसको खून आ रहा है उसका उसके पास हाजिर होना मकरूह है, यानी नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से ज़्यादा बातचीत करना भी उसके पास मकरूह है, और रोना भी मकरूह है, जो इंसान जानकुनी के आलम में है, जान देने वाला है, उसके पास रोना मकरूह है। इसी तरीके से जो है वो सिर्फ औरतों को मुहतज़र के पास छोड़ देना, यानी कोई इंसान मरने वाला है, मौत के आसार तारी हो गए हैं उस पर, और उसके बाद जो है वो सिर्फ औरतों को छोड़ दिया जाए, कोई मर्द उसके पास ना रहे, ये भी मकरूह है, यानी मर्द भी जो है कोई ना कोई उसके पास होना चाहिए। ये मकरूहात और मुस्तहबात हमने आपके सामने बयान किए मरने से पहले पहले के, लेकिन अब मरने के बाद की नौबत है। मरने के बाद जो है वो चंद चीज़ें मुस्तहब हैं, जिनमें सबसे पहले यह है कि जैसे ही किसी इंसान का इंतकाल हो, फौरन जो है उसके मुंह को और उसकी आँखों को बंद कर दिया जाए। इसी तरीके से जो है वो उसकी ठोड़ी को भी जो है वो बांध देना चाहिए, और इसके बाद जो है वो उसके हाथ और पैरों को फैला देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई जो है वो करवट के बल लेटा है या पैरों को सुकेड़े हुए हैं, तो उसके पैरों को जो है सीधा कर देना चाहिए, या हाथ मोड़ रखा है उसके हाथ को भी सीधा कर देना चाहिए। ये काम जो है जल्दी अंजाम देने चाहिए, क्योंकि अगर देर की जाए तो मुमकिन है कि ये हाथ और पैर अकड़ जाएँ। इसी तरीके से जो है वो कोई कपड़ा जो है, कोई चादर उसके ऊपर डाल देनी चाहिए, यानी जैसे इंतकाल हो फौरन कोई चादर उसके ऊपर डाल दे जाए। इसी तरीके से अगर जो है रात में इंतकाल हो, तो मुस्तहब ये है कि जहाँ पर उसका इंतकाल हुआ है वहाँ पर चराग जला दें, और एक मुस्तहब ये है कि इंतकाल के बाद जो है मोमिनीन को ख़बर दी जाए उसके मरने की, ताकि मोमिनीन जो है उसके जनाजे में शिरकत करें, और वक्त का ऐलान भी कर दिया जाए कि इतने बजे जो है वो जनाजा उठाया जाएगा, ताकि मोमिनीन ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। इसके बाद जो मुस्तहब वो ये है कि दफन करने में जल्दी करनी चाहिए, ज़्यादा देर जो है वो बग़ैर दफन किए नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर यकीन नहीं हुआ है कि मर गया है, यानी शक है कि मरा है या नहीं मरा है, कि हो सकता है सकता हो गया हो, तो सब्र करना चाहिए, जल्दी दफन नहीं करना चाहिए, सब्र करें, इतनी देर तक कि मालूम हो जाए कि मर गया है। उसके बाद जो है एक चीज़ मुस्तहब है हामिला औरत के सिलसिले में, अगर मैयत जो जिसका इंतकाल हुआ है औरत का, अगर वो हामिला है और बच्चा उसके पेट में ज़िंदा है, तो उसकी दफन करने को इतनी देर तक जो है वो पीछे हटा दें, यानी इतनी ताखिर करें उसके दफन करने में कि ऑपरेशन के ज़रिए से बच्चे को जो है उसके पेट से निकाल लिया जाए, और जब बच्चा उसके पेट से निकल जाए तो अब मुस्तहब ये है कि उसके पेट को सिलें, और सिलने के बाद जो है यानी टाँके वगैरह लगाएं, उसके बाद जो है उसको दफन किया जाए। ये जो है मुस्तहबात है जो हमने आपके सामने बयान किए। अलबत्ता मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इतनी देर तक ताखिर करना, यानी अगर बच्चे को निकालने में देर भी हो रही है तो सब्र करना चाहिए, रुकना चाहिए, और उसके बाद जो है वो उसके जो पेट को जो काटा है उसको सिलना, उसमें टाँके वगैरह लगाना, ये तमाम चीज़ें मुस्तहबात में है। लेकिन ख़ुद बच्चे को निकालना जो है, अगर उसके पेट में बच्चा ज़िंदा है तो बच्चे को निकालना जो है वो वाजिब है। इसके बाद जो है वो कुछ वाजिबात हैं जो मरने के बाद मुर्दे की निस्बत इंसान पर वाजिब होते हैं, उनको हम आपके सामने बयान करेंगे। अगर कोई इंसान, कोई मर्द मुसलमान, अगर कोई मुसलमान जो 12 इमामी यानी 12 इमामों को मानने वाला है और उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसकी निस्बत जो है वो चंद चीज़ें वाजिब हैं। सबसे पहले तो गुस्ल, मुसलमान मैयत को गुस्ल देना वाजिब है, हुनूत करना वाजिब है। गुस्ल, हुनूत वगैरह सब कैफियत हम बाद में आपके सामने बयान करेंगे। इसी तरीके से कफन पहनाना भी वाजिब है, नमाज पढ़ना उस पर नमाज मैयत ये भी वाजिब है, और उसको दफन करना भी वाजिब है। अब रही बात ये कि गुस्ल कैसे होगा, हुनूत कैसे होगा, कफन कैसे होगा, नमाज कैसे पढ़ेंगे, दफन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुफस्सल हम आपके सामने अगले प्रोग्राम्स में बयान करेंगे। यहाँ पर जो है वो एक दो मसाला आपके सामने बयान करते हैं और उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहीं पर तमाम हो जाएगा। और प्रोग्राम ये है कि अगर कोई बच्चा जो है वो दुनिया इंतकाल कर जाता है, यानी उम्र कम है और इंतकाल कर गया, यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा औरत के पेट से साकित भी हो जाता है यानी गिर जाता है, और वो जो है 4 महीने का है या 4 महीने से ज़्यादा का है, यानी हम लोग ठहरे हुए 4 महीने हो चुके हैं या 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, और उस बच्चे के माँ बाप दोनों मुसलमान हैं या दोनों में से कोई एक मुसलमान है और 12 इमामों के मानने वाले हैं, तो जो काम हमने भी बताए हैं मरने के बाद वाजिब होते हैं, गुस्ल, हुनूत, कफन, नमाज वगैरह, वो तमाम के तमाम जो हैं इस बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। यानी जो बच्चा 4 महीने का हमल के बाद जो है साकित हो गया है, इस बच्चे के लिए भी ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ एक चीज़ जो है वो वाजिब नहीं है, और वो नमाज पढ़ना, इसलिए कि बच्चे पर 6 साल से पहले नमाज नहीं पढ़ी जाती है, जब 6 साल का हो जाता है तब नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन गुस्ल, कफन और हुनूत वगैरह और दफन करना, ये जो है चाहे बच्चा छोटा हो, यहाँ तक कि अगर बच्चा गिर भी जाए और उसकी वो जो है 4 महीने हमल ठहरे हुए हो गए हैं, तो उसके लिए भी ये तमाम की तमाम चीज़ें वाजिब हैं। हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम हो जाता है। अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे और दूसरे मसाइल और गुस्ल और कफन वगैरह की मुफस्सल गुफ्तगू आपके सामने पेश की जाएगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।